ओम शांति। हम सबने राजयोग की महिमा सुनी। राजयोग क्या है और उससे लाभ क्या होता है? योग अर्थात संबंध और राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च सर्वोपरि से स्नेह का संबंध, और जहां स्नेह होता है वहां तो कुर्बानी होती है, त्याग होता है, समर्पण ममता की भावना होती है, अर्थात जीवन न्यौछावर होता है। तो परमात्मा के प्रति हमारा जीवन ही न्यौछावर हो जाए, ये प्रेम का परिणाम होना चाहिए। तो राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च से संबंध जो सत्यम शिवम सुंदरम है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि से संबंध और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति दिलाने वाला संबंध। जहां संबंध होता है वहां प्राप्ति भी बहुत होती है, त्याग भी है, लेकिन त्याग इतना नहीं है जितनी प्राप्ति होती है, अधिकार होता है। तो जहां अधिकार है प्राप्ति जरूर है, उस अधिकार और प्राप्ति की भेंट में त्याग तो कुछ भी नहीं है। तो राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च से संबंध जिनसे ऊंचा कोई नहीं, और सबसे श्रेष्ठ विधि के द्वारा संबंध और सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति इस संबंध में है, इसलिए इसका नाम राजयोग है। तो अब इसके लिए क्या विधि अपनाएं? कई समझते हैं कि परमात्मा तो एक जैसे पहाड़ हो और उसकी चोटी हो, तो चोटी तो एक ही होती है। तो कई समझते हैं ईश्वर तक पहुंचना माना जैसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना। अब चोटी तक पहुंचने के लिए रास्ते कई होंगे, पर हम कौन सा रास्ता पसंद करेंगे? माउंट आबू जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन हम कौन सा रास्ता पसंद करेंगे? जो सहज हो, सरल हो, शॉर्टकट हो, या कोई कठिनाई वाला, लंबा, चौड़ा, पथरीला, पैरों नंगे पैरों से चलना पड़े, कांटे हो, क्योंकि का रास्ते तो कई होंगे, तो कौन सा पसंद करेंगे? सबसे सहज ना, यहाँ से गाड़ी से चले जाओ, ऊपर पहुंच जाओगे आप आधे घंटे में, और अगर पैदल निकलने बैठ चलो तो क्या होगा, पहुंच पाएंगे? चलो पहुंच भी गए, पर रास्ता तो वही लेना होगा ना। अगर पहाड़ों पर चढ़ करके जाने की कोशिश करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? तो इसीलिए राजयोग हमें वो सहज मार्ग बताता है, जिस मार्ग पर चलकर हम उस परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। और मिलन मनाना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, परंतु उस मिलन से प्राप्ति क्या करें? जैसे कोई व्यक्ति किसी से मिलना चाहता है तो मिलना ही लक्ष्य नहीं होता, मिलना तो लक्ष्य होता है, वो तात्कालीन लक्ष्य, भाई मुझे उनसे मिलना है। तो लोग पूछेंगे क्यों मिलना है, क्या चाहते हैं उनसे? तो परमात्मा से मिलना ये तात्कालीन लक्ष्य है, क्योंकि राजयोग का अर्थ ही आत्मा परमात्मा का मिलन, और उस मिलन के लिए आधार है, विधि है। पर इस मिलन के द्वारा प्राप्ति क्या होनी है, वो है हमारा अंतिम लक्ष्य। वास्तव में वही जीवन का भी लक्ष्य है। हम सब यही तो चाहते हैं कि जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो। तो परमात्म मिलन से ये सब प्राप्तियां होती है, परंतु अगर नहीं हो रही है ये प्राप्ति, इसका मतलब मिलन नहीं हो रहा है। तो राजयोग की तुलना हम एक यात्रा से कर सकते हैं। जिस प्रकार यात्रा पर जाने वाला यात्री अपने इष्ट का दर्शन करना चाहता है तो यात्रा पर निकल पड़ता है, परंतु दर्शन मात्र ही तो सब कुछ नहीं है, फिर उस दर्शन से वो प्राप्ति भी तो बहुत करता है। इसी प्रकार परमात्मा की याद अथवा यह राजयोग एक यात्रा है, और इस मिलन का तात्कालीन लक्ष्य तो है उस परमात्मा की अनुभूति, उनसे सद्गुणों की अनुभूति, क्योंकि वो तुरंत होने लगती है। जैसे सूरज के सामने खड़े रहो, तुरंत गर्मी महसूस होने लगेगी, प्रकाश दिखाई देने लगेगा, महसूस होने लगेगा। सागर के किनारे खड़े होकर के ठंडक मिलती रहेगी, पर यही तो केवल लक्ष्य नहीं है, फिर उसके बाद भी लक्ष्य है परमात्म मिलन का। और वो लक्ष्य है कि जिस परम धाम से हम सभी आत्माएं आई थी, उसी परम धाम में आत्माओं को वापस जाना है, और जिस स्थिति में आई थी उसी स्थिति में वापस जाना है। हम आत्माएं परम धाम में मुक्त थी, सर्व बंधनों से मुक्त थी, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई रोग नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित है, मुक्त स्थिति है। आत्मा के लिए बहुत सुंदर कहा गया है कि आत्मा के लिए कहेंगे कि आत्मा एक पंछी की तरह है। पंछी अगर उड़ता है तो बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि पंछी का गुण होता है स्वतंत्रता। अगर पंछी पिंजरे में है तो कई बार बड़ा दुख होता है, ये बेचारा पिंजरे में बैठा है, पंख है लेकिन उड़ नहीं पाता है। तो एक और आत्मा को भी पंछी कहते हैं, और दूसरी और आत्मा को परदेसी भी कहते हैं। परदेसी है वो, फॉरेनर है इस दुनिया में। तो पंछी और परदेसी किसी के मित्र नहीं होते। पंछी को हम पिंजरे में नहीं बांध सकते, और परदेसी से अगर प्रीत रखी तो एक दिन धोखा दे सकता है, क्योंकि वो तो चला जाएगा परदेश और हम यहीं के यहीं रह जाएंगे हैं। या तो अपने साथ ले जाए, कई बार साथ नहीं ले जाएगा, वो जाता है कहेगा अच्छा मैं बुलाऊंगा, और वहां जाके तो भूल भी जाता है। हा? तो पंछी और परदेसी से कभी मित्रता नहीं रखना, ऐसे कहा गया है, क्योंकि पंछी का बसेरा तो आकाश है, उसको हम कैद में नहीं रख सकते हैं, चाहे कितना भी उसे प्यार करें। परंतु एक दिन पिंजरा भूल से भी खुला रह गया पंछी का, तो क्या होगा, उड़ जाएगा या बैठा रहेगा? वो तो इंतजार करता रहता है कि कब ये पिंजरा भूल से भी खुल जाए तो मैं उड़ जाऊं। हाँ, पंख टूटे हुए हैं तो बेचारा उड़ नहीं सकता है, मोहताज हो जाता है, तो इसलिए वहीं बैठना पड़ता है। लेकिन अगर पंख हैं तो पंछी का बसेरा तो आकाश होता है, केवल दाना चुगने के लिए उसको धरती पर आना पड़ता है। तो आत्मा रूपी पंछी का जो बसेरा है, जो ठिकाना है, वो तो आत्माओं का धाम है। लेकिन हम कार्य अर्थ इस संसार में आए, पर भूल क्या की कि हमने यहाँ ही अपना ठिकाना बना दिया। भूल गए कि हम यहाँ तो परदेसी हैं, इस संसार में। परदेसी से अगर मित्रता रखी और उसको घर जमाई बना दिया तो रहेगा, रह थोड़ी सकेगा, जब वीजा पूरी होगी तो जाना पड़ेगा ना, नहीं रह सकेगा। अगर रह गया इलीगली, गैर कानूनी दृष्टि से, तो पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, क्योंकि वीजा नहीं है। तो परमात्मा भी कहते हैं तुम अपना कार्य समाप्त कर, तुम्हें घर लौटना है। लेकिन आत्मा के पंख टूट गए हैं, इसीलिए आत्मा वापस जा नहीं सकती। चाहती तो है लेकिन जाए कैसे, मुक्ति चाहती तो है लेकिन दूसरी ओर जैसे कोई भागना चाहता है, पर रस्सियां बंधी हुई है तो भाग सकेगा। तो हमारी भी यही स्थिति हो गई है, कई बंधनों में हम बंध गए। ये सबसे बड़ा बंधन तो ये देह का अभिमान है, और इसी देह अभिमान से पनपते हैं कई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, छल, कपट, निंदा, चुगली, बेईमानी, बहुत लंबी लिस्ट है जिसका आज बोलबाला है। और आगे बढ़ते जाओ तो सबसे विकराल स्वरूप आज है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद एक बिल्कुल भूत की तरह चारों ओर खड़ा है, या दीमक की तरह सारे समाज को खाता जा रहा है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, सब प्रकार का आचरण, और सदाचार का तो नामो निशान नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में परमात्मा आकर के हम आत्माओं को घर का रास्ता बताते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान और योग के पंख भी देते हैं, जिन पंखों से हम आत्मा उड़ सकती है वापस अपने धाम में। साथ में उमंग और उत्साह के भी पंख देती है, देते हैं परमात्मा, जिससे हम सहज उड़ान भर करके अपने घर में पहुंच जाते हैं। जब तक हिसाब किताब चुकतु हो और घर पहुंचे आत्मा वापस जाए, तब तक मन और बुद्धि से तो जा ही सकते हैं। तो मन बुद्धि के पंख कहो, ज्ञान योग के पंख कहो, या उमंग उत्साह के पंख कहो, जिनसे हम आत्मा उड़कर अपने धाम में पहुंच सकती है और परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकती है। और उस मिलन से जो आत्मा का मूल स्वभाव है, जो आत्मा के मूल सद्गुण हैं, आत्मिक गुण, जो कोर वैल्यू, स्वाभाविक गुण, वो अनुभव हम फिर से कर सकते हैं उनके सानिध्य में। तो इस राजयोग के लिए अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे आप अहमदाबाद से बाय रोड अगर माउंट आबू आए, या ट्रेन से भी आए, तो पहले मेहसाना आया होगा, सिद्धपुर आया होगा, पालनपुर आया होगा, और जैसे जैसे स्टेशन आते गए आप सोचते होंगे कि बस अभी आबू पहुंचे कि पहुंचे। बीच में कई अन्य स्टेशन्स आए, और स्टेशन्स को पार करते करते कहेंगे अभी आबू रोड आया, अभी आबू रोड आया, तो वहां पहुंचना है। इसी प्रकार हमारा जो लक्ष्य है कि हम आत्माओं को अपने घर जाना है, पर किस स्थिति में जाना है, जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में जाना है। विदेश कोई अगर जाता है और वहां से कोई इलीगल सामान लाता है तो कस्टम्स में उसको अंदर आने नहीं देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि वो कानूनन अपराध है कोई भी ऐसे गैर कानूनी चीज लाना, तो कस्टम्स में पकड़ लेंगे और उसकी चीज भी ले लेंगे, उससे जुर्माना भी लेंगे, और अगर इतनी कोई ऐसी चीज है तो जेल में भी जाना पड़ सकता है। और नाम कितना बदनाम होता है कि इस व्यक्ति ये ऐसी चीजें लाया। तो आत्मा जिस शुद्ध स्वरूप में सृष्टि मंच पर आई थी उसी शुद्ध स्वरूप में वापस जाना है, लेकिन समय अंतराल जो कुछ विकृतियां आई दे अभिमान के कारण, उन सबको यही खत्म करना है और शुद्ध और पवित्र होकर ही जाना है। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ खेलने भेजती है मैदान में, जाओ बच्चे खेलो, घर में क्या बिठा के करेगी, छोटा है खेलना है उसको, अगर बाहर नहीं भेजेगी तो घर में ही तंग करेगा, तो जाओ खेलो। पर खेल खेल में बच्चा मैला हो जाता है ना, गंदा हो जाता है, गिरता है, मारता है, कपड़े फाड़ता है, गंदगी, मतलब बहुत मैला हो जाएगा। तो जब शाम होती है तो घर वापस बुलाएगी या बिठा देगी मैदान में, क्या करेगी, खेलते ही रहो सारा समय, नहीं, शाम होगी बेटा चलो घर। लेकिन अगर बेटा नहीं मानता है तो माँ क्या करेगी, जबरदस्ती भी तो ले जाएगी ना घर की, छोड़ देगी बेटा नहीं मानता है तो। कई बार बच्चे मानते नहीं है लेकिन जबरदस्ती भी लेके ही जाएगी, क्योंकि बिठाना नहीं है वहां। और जब ले जाएंगी तो उसको स्वच्छ भी तो करेंगी या गंदा ही छोड़ देगी, हा? मेला तो हो गया, भेजा तो बड़ा स्वच्छ था नहा धोला करके, और जब मैदान में जाके मेला हो गया और घर जाने का समय है तो उसको स्वच्छ तो करेगी ना, तभी तो उसको घर में एंट्री देगी, ऐसे कैसे देगी। इसी प्रकार परमात्मा भी अब हम आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, मैं तुम्हारा माता पिता के रूप में अब तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूं, और जिस शुद्ध स्थिति में आप आए थे उसी शुद्ध स्थिति में वापस लौटना है। तो शुद्ध होने के लिए शिव बाबा हमें बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। जैसे वह माँ स्नान कराती है तो ये आत्मा का स्नान है, योग का स्नान है, जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और इसलिए भगवान हमें कहते हैं, हे आत्माएं, मैं तुमको शुद्ध करने आया हूं, परंतु उसके लिए क्या शर्त रखते हैं कि तुम शुद्ध जरूर हो जाओगे, और उसके लिए शर्त है कि तू मुझे याद कर। तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान का वायदा है कि मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, पर शर्त ये रखता है कि तू मुझे याद कर, ये नहीं कि कंडीशन के बिना ही पापों से मुक्त कर देगा। हम एक कदम उनके आगे जाएं तो वो 100 कदम हमारे आगे आएगा, लेकिन शर्त है कि हम तो एक कदम जाएं आगे उनके, हम जाएं नहीं और हम चाहें कि वो आए तो कैसे हम शुद्ध होंगे। इसीलिए उसने तो कदम बढ़ाया, हमने 2 युग से भक्ति की, भगवान को पुकारा, अब परमात्मा हमारी पुकार पर हमें शुद्ध करने लिए आए हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये रख रहे हैं कि हे आत्माएं तू मुझे याद कर, इस मन को मुझ में एकाग्र कर। तो इस यात्रा के अंतर्गत जो मंजिल है वो मंजिल है कि आत्मा अपने मूल गुणों को फिर से अनुभव करे परमात्मा की स्मृति से, परंतु उसके लिए कई पड़ाव है, क्योंकि मन पर कई जन्मों का पाप, मतलब कई जन्मों की मैल, पापों की चढ़ी हुई है, और उस मैल को उतारना भी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा इस मन रूपी पात्र में तभी टिक सकेगा, है ना। जैसे दूध एक शुद्ध चीज है, पर उस शुद्ध चीज को रखने के लिए बर्तन भी तो शुद्ध चाहिए। अगर मैला बर्तन होगा और उसमें दूध रख देंगे तो दूध भी मैला हो जाएगा, दूध तो पीने योग्य नहीं होगा। या खटाई होगी उस बर्तन में, नींबू या चार या ऐसे कुछ लगा हुआ होगा, तो जैसे ही दूध डाल करके उबालना शुरू करेंगे फट जाएगा। तो दूध को दूध रहने के लिए पात्र भी उतना ही शुद्ध चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा की याद उस शुद्ध दूध की तरह है, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र परमात्मा का वो स्वरूप, वो छवि, वो याद रखने के लिए हमारे मन रूपी पात्र को भी शुद्ध करना जरूरी है। तो कई समझते मंत्र से शुद्धिकरण होगा, या यज्ञ से शुद्धिकरण होगा, या माला फेरने से शुद्धिकरण होगा, या कोई मूर्ति स्थापित की या स्वच्छ वातावरण किया उससे शुद्धिकरण होगा। उससे थोड़ा समय तो चलो लाभ मिलेगा, पर मन के शुद्धिकरण का जो तरीका है वो राजयोग बताता है। मन के शुद्धिकरण का तरीका केवल कुछ जाप करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम आपको मंत्र के जाप के लिए कहते हैं कि भाई 100,000 बार ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप करो। अब 100,000 की तो बहुत बड़ी गिनती है, तो हो सकता है सवेरे उठ के आपने 100 किया, फिर दूसरी बार 1,000 किया, फिर 5,000 किया, फिर 10,000 किया, अभी 100,000 माना 100,000, तो सारे दिन में कितनी बार आपको बैठना होगा? एक ही समय तो नहीं हो सकेगा, बहुत काम होता और भी। तो आप क्या करेंगे? गिनती करते रहेंगे, अभी 100 हुआ, अभी 500 हुआ, अभी 1,000 हुआ, अभी 2,000 हुआ, 5,000 हुआ, फिर तो शाम हुई इतने में, अभी तो बाकी और 5,000 है, अभी बैठ जाएंगे करने के लिए, रात तक पूरा करना है। तो योग किसके साथ हुआ? योग समझ, योग बना संबंध। तो योग किसके साथ हुआ? शिव के साथ हुआ या गिनती के साथ हुआ? किसके साथ हुआ? गिनती के साथ हुआ। शिव से तो योग हुआ ही नहीं, क्योंकि ओम नमो शिवाय माना कि मैं शिव से योग लगा रहा हूँ, अर्थात मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ, मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ, पर ये है ओम नमो शिवाय। अब शिव को तो नमस्कार हुआ ही नहीं, गिनती को नमस्कार जरूर हो गया। यही कहेंगे ना, शिव को याद करना माना पहले शिव को समझना कि वो शिव है कौन, वो कहाँ है, क्या मेरा उनसे संबंध है, फिर मैं कौन हूँ। तो उसके लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए। अगर देह का अभिमान होगा तो शिव को नमः कैसे कर पाएंगे? अभिमानी व्यक्ति नमः कर सकता है क्या? नमस्कार करने के लिए भी नम्रता चाहिए, सिर झुक जाता है ना नमस्ते करते समय कि आप मेरे से 10 गुना महान हो, तो नम्रता चाहिए। और अभिमान होगा तो ये मंत्र सार्थक कैसे होगा? और शिव का पता ही नहीं तो भी मंत्र सार्थक नहीं होगा। इसीलिए राजयोग में जो पहला कदम है वो है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, क्योंकि मंत्र का अर्थ कोई शब्द नहीं है, मंत्र का अर्थ होता है कोई मंत्रणा। मंत्रणा शब्द से निकला है, मंत्र शब्द, मंत्रणा का अर्थ होता है कोई राय, कोई सलाह जो मन को दी जाए। तो मन को बुद्धि के द्वारा सलाह देना, राय देना, विचार देना, जिससे मन का शुद्धिकरण हो, ये है मंत्र। मन जिससे मन त्राण हो जाए, त्र हो जाए, तृप्त हो जाए, भरपूर हो जाए, शुद्ध हो जाए। अब वो क्या है चिंतन? वो राजयोग हमें सिखाता है, क्योंकि मन को काम देना है। अगर मन को काम नहीं देंगे तो कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। खाली मन होगा ना तो शैतान का घर बन जाएगा। जैसे बच्चा अगर चंचल है उसको काम देना होता है, काम देंगे तो उसमें बिजी हो जाएगा, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो तो शैतान का घर बन जाएगा। तो मन भी चंचल बच्चे की तरह है जिसको काम देना होता है, और वो कार्य क्या है? श्रेष्ठ विचारों को मन में लाना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, इसलिए मेरा घर कौन सा, मेरा पिता कौन। तो ये ज्ञान का मनन चिंतन करना, बुद्धि के द्वारा मन को दिशा देना परमात्मा की ओर, ये है राजयोग का पहला स्टेप, जिसको कहते हैं श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन। उसके लिए ज्ञान का भोजन चाहिए, जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए सही खुराक चाहिए। अगर खुराक सही नहीं होगी तो कई बीमारियां आ जाती है, या हमारा हीमोग्लोबिन डाउन जाएगा, कमजोरी आएगी, फिर उससे कई रोग उत्पन्न होंगे। किसका खून कम होता है या हीमोग्लोबिन नंबर ठीक नहीं है तो कहेंगे भाई आयरन टैबलेट लो, फॉलिक एसिड खाओ, विटामिन बी कैप्सूल्स खाओ, तो दवाई उनको उसी अनुसार देते हैं, ये हरी सब्जी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो ये खाने से आपके आपका जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगी, आप में शक्ति आएगी, आपके अंदर ताकत बढ़ेगी। तो जैसे शरीर की ताकत के लिए ये सही खुराक चाहिए, वो तो बाहर से आएगी। अब मन को भी हम जो खुराक देते आए हैं वो कितनी गलत खुराक देते हैं। सवेरे उठते ही पहली पहली मन की खुराक क्या है? अखबार पढ़ेंगे। अखबार में क्या आएगा? इतना यहाँ आतंकवादियों ने हमला किया, इतने मर गए, ये इसका इसकी हत्या हुई, ये लड़की भाग गई, ये चोरी हो गई, ये यही अखबार में आता है। तो सवेरे सवेरे मन को कौन सा भोजन दिया? और इतनी आदत पड़ गई है इसी भोजन को खाने की कि अगर अच्छी न्यूज होगी ना, कहेंगे आज मजा नहीं आया अखबार पढ़ने में। अखबार पढ़ने में मजा तब आता है जब सनसनीखेज कुछ ऐसी न्यूज आती है, वो नेगेटिव न्यूज, अच्छी खबर नहीं, बुरी खबर। तो इसीलिए मन को हम सुबह सुबह वही खुराक देते हैं, या टीवी खोलेंगे तो सुबह सुबह नाच गाने या लड़ाई झगड़ा, बीबीसी सीएनएन ये सब बस हिंसा की बातें, या तो काम वासना या तो क्रोध, यही बातें हम देख रहे हैं, यही सुन रहे हैं। तो मन को खुराक क्या मिलेगी? वही मिलेगी। और वही सारा दिन हम सोचते रहते हैं, फिर जिससे मिलेंगे उसको यही कहेंगे, अरे तुमको पता है ऐसे हुआ, तुमको पता है ये हुआ। तो बोलचाल में भी वही भाषा, सुनना भी वही, देखना भी वही, बोलना भी वही। तो मन को तो वही मिला जो बाहर से अंदर गया, अंतरात्मा का शुद्धिकरण तो हुआ ही नहीं। इसलिए देखो पहले जमाने में सवेरे सवेरे उठ करके पहले प्रार्थना करते थे, पहले उठ करके भजन गाना, माना ईश्वर को याद करना, पूजा पाठ करना। इंसान आज तो सब भूल गया, उनका पूजा पाठ अखबार और टीवी हो गया है, यही हो गया, सब कुछ बदल गया है। इसीलिए परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, बच्चे सबसे पहले जैसे आंख खुले हम बाबा शिव बाबा कहते हैं, कौशिक बाबा गुड मॉर्निंग, हाँ शुभ। तो जैसे सवेरे सवेरे जिसका पहले मुंह देखना होता है, कहते हैं सारा दिन उसी अनुसार जाता है। किस दिन अगर बहुत खराब दिन गया तो क्या कहते हैं, आज सवेरे से पता नहीं किसका मुंह देखा, दिन भर मेरा खराब गया। तो सबसे पहले किसको याद करो? उठते ही शिव बाबा को, वो मेरा सर्व संबंधी है, उनसे ही मेरा सब संबंध है। तो सवेरे अगर अच्छा जाएगा तो दिन भर भी अच्छा जाएगा। तो जब हम राजयोग करते हैं, मान लो सबसे पहले अपने आप को श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन देना है। ये मनन चिंतन बुद्धि के द्वारा मन को देते हैं, वो अच्छी खुराक मन को मिलती है, तो मन का सशक्तिकरण होता है। लेकिन जब हम ये अलग अलग श्रेष्ठ विचार मन को देते हैं तो इतनी आदत तो है नहीं, क्योंकि आदत तो यही है व्यर्थ सोचने की, नकारात्मक सोचने की। तो नकारात्मक और व्यर्थ बातें मन में आएगी। तो कई लोग कहते हैं मेरे से तो योग होता नहीं, क्योंकि मैं तो बैठता हूँ शिव बाबा को याद करने और पता नहीं क्या क्या बातें मन में आती है। तो वो तो आएंगी, क्योंकि मन को अभी सही खुराक खाने की आदत नहीं है। तो मन तो चंचलता करेगा, क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण है, पुराने जन्मों के संस्कार हैं, तो वो मन पर अपना प्रभाव डालेंगे। लेकिन घबराना नहीं है। जैसे नलके में गंदा पानी होता है, आप अगर उसके ऊपर स्वच्छ पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, आखिर क्या होगा? गंदा पानी निकल जाएगा ना, स्वच्छ पानी रहेगा बाल्टी में। तो आत्मा के अंदर भी जो अगर विकृति है, तो स्वच्छ बातें, ज्ञान की बातें मनन करते रहो करते रहो, तो जो कुछ व्यर्थ और अशुद्ध है वो अपने आप निकल जाएगा और मन का शुद्धिकरण होगा। तो पहली अवस्था में हो सकता है समय लगे। जैसे जो पहली बार कोई गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो उसको इंस्ट्रक्शन यही मिलते हैं, फर्स्ट गियर में चलाओ। फर्स्ट गियर होता है, फर्स्ट गियर बड़ा हैवी गियर होता है, तो ब्रेक लगा सकते हैं जल्दी, अगर मानो कोई कोई विघ्न आया तो एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योंकि टॉप गियर में अगर ब्रेक एकदम से लगाई तो जबरदस्त एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए हैवी गियर है पहला गियर। फिर जैसे जैसे सीखते जाते हैं फिर सेकंड गियर में, फिर थर्ड गियर, फिर टॉप गियर। हाँ, रास्ता साफ है तो चलो एकदम हल्की हो जाती है गाड़ी, और जैसे उड़ा के ले जाते हैं, फास्ट स्पीड में ले जा सकते हैं। तो राजयोग में भी चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, जिसमें कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी व्यर्थ भी आएंगे, कभी अशुद्ध भी आएंगे, परंतु घबराना नहीं है क्योंकि अभी सीख रहे हैं, शुद्ध विचार करना सीख रहे हैं। कभी तो ऐसे विचार आएंगे जो कभी नहीं पहले सोचा, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि अंदर में बहुत विकार भरे हुए हैं संस्कारों में, वो निकलेंगे ना। जैसे आप देखिए कोई बहुत क्रॉनिक बीमारी होती है, बहुत पुरानी बीमारी होती है, तो अब होम्योपैथी लेते हैं तो होम्योपैथी डॉक्टर को पता है कि भाई ये बीमारी है, और एकदम ठीक दवाई आपको मिली तो डॉक्टर कहेगा देखो भाई ये दवाई आप लेंगे तो हो सकता है थोड़ी बीमारी आपको लगे कि बढ़ गई, लेकिन घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि जड़ से खत्म हो जाएगी, ये दबेगी नहीं, अंदर में बहुत घर कर चुकी ना, क्रॉनिक हो गई है, वो बाहर आएगी, और एक बार बाहर आई वो निकल जाएगी सदा के लिए, फिर नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे नकारात्मक विचार भी आएंगे जो आपको लगेगा अरे ये क्या, मैंने तो पहले कभी नहीं ऐसे सोचा, ये क्यों मेरे मन में आया, बाबा मैं तो नहीं कर सकता हूं, वही जवाब दे दिया। पर घबराना नहीं है, ये एक कदम है आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, उनको जड़ से खत्म करने के लिए। तो इसीलिए पहली अवस्था में है, अगर मन नहीं लगता तो बैठ करके कुछ अच्छी बातें पढ़ो, तो पढ़ेंगे वही बातें सोचेंगे क्योंकि वो खुराक मिलेगी, नहीं तो मन बेलगाम घोड़ा होके भटकेगा। तो पहली अवस्था है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, अपने आप से बातें करो अंदर ही अंदर, मैं कौन और किसकी संतान और कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, जिसको हम कहते हैं अपने साथ बातें करो, अपने साथ अपॉइंटमेंट। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनकी डायरी में कईयों के नाम होते हैं जिनसे अपॉइंटमेंट होती है, आज मुझे अभी ये फलाने से मिलना है, फलाने से मिलना है, फलाने से मिलना है, तो अपॉइंटमेंट की डायरी होती है, लेकिन उस अपॉइंटमेंट की डायरी में अपना नाम नहीं होता है कि अपने साथ भी अपॉइंटमेंट है। हा? अपना नाम डाला है कभी अपॉइंटमेंट में? अपॉइंटमेंट समझते ना, हाँ इससे मिलना है, कुछ काम है, पर अपने से भी बातें करने के लिए समय देना होगा कि मैं आत्मा वास्तव में क्या चाहती हूँ, क्या हूँ मैं, क्या करना है मुझे इस जीवन में, मुझे आखिर पाना क्या है, कितना लेना है। तो ये सारी बातें अंदर से करेंगे तो अंदर से ज्ञान निकलेगा। जो बाहर से आता है ना वो है सूचना, जो अंदर से आता है वो है ज्ञान। ये सारे गुण अंदर से आएंगे, परंतु उसके लिए अपने को समय देना होगा। और जैसे हम पहली अवस्था से गुजरते हैं, उसके बाद दूसरी अवस्था है परमात्मा से रूह रूहान, अंदर ही अंदर भगवान से बातें करो, भगवान से बातें करो। अक्सर करके हम भगवान से बातें जब करते हैं ना, तो अक्सर देखा गया केवल मांगने के लिए ही बातें करते हैं, हे भगवान ये दो वो दो वो दो वो दो, हाँ ये दो 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 दो, लो कभी नहीं कहेंगे दो 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 दो। हाँ, एक व्यक्ति था, हंसी की बात सुनाते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, अपनी चीज तो कभी किसी को देता नहीं था, बस चाहिए चाहिए चाहिए, हाँ मुझे ही मिले, दो 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 खाली करता था। तो अचानक एक दिन वो नदी में तैर रहा था तो डूब रहा था। अब डूबने लगा, डूब रहा है, तो कोई तैराक आकर के उसको कहा कि अब मेरा अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। वो दे रही नहीं, क्योंकि लेने की आदत है ना, देने की तो आदत है ही नहीं तो लेना है लेना है, लेने की आदत है, तो उसको कहा अपना हाथ दो, हाथ दो। वो देवी नहीं, फिर उसने वो जो तैराक था फिर भी समझदार था, उसने कहा अच्छा मेरा हाथ लो, फट से पकड़ लिया अपना हाथ देने को तैयार नहीं, दूसरे का हाथ पकड़ने को तैयार। इतने कंजूस होते ना लोग, वो डूब रहा है तो भी देने को तैयार नहीं, ये हालत होती है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर भी लोग ऐसे हैं, भगवान ये दो ये दो ये दो, पर मैं भी कुछ दूं भगवान को, भगवान को थोड़ी कुछ चाहिए, उसको तो मुझे ही देना है ना। पर ये हम भूल जाते हैं कि उसका जो कुछ मेरे पास है ये उसका ही दिया हुआ है, ये मेरे पास उसकी अमानत है। बहुत सुंदर इंग्लिश में कहावत है, व्हाट यू हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, आपके पास जो है वो भगवान की दी हुई देन है, एंड व्हाट यू मेक ऑफ इट विल बी योर गिफ्ट टू गॉड, आप उसमें से क्या बनाएंगे वो आपकी गिफ्ट ईश्वर के प्रति होगी, जो आप फिर से इस संसार को वापस दे जाएंगे, बाकी तो कुछ नहीं ले जाएंगे अपने साथ। तो इसीलिए ये सब उनका है, ये समझ करके हम भगवान से बातें जब करते हैं तो मांगते कुछ नहीं है, और ही अंदर में हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर से कि हे भगवान तुमने जो कुछ हमें दिया है बड़ा योग्य समझ कर दिया है कि मैं इसकी संभाल रखूंगा, एक का 10 गुना करके आपको वापस करूंगा, क्योंकि संसार में छोड़ के जाना है, कुछ लेके तो नहीं जाना है ना। तो इसीलिए कोई वस्तु तो मांगते ही नहीं है कभी भगवान से। दुनिया में तो कितने लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है जो हम लोगों को है, कम से कम ये तो हमें कोई चिंता नहीं है कि दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता है मिलेगा, हमको केवल जाके टेबल पर बैठना है, थाली में सब कुछ हमें मिलेगा। पर लोग तो ऐसे भी हैं जिनको ये चिंता है कि दोपहर का खाना मिलेगा भी या नहीं, तो कौन ज्यादा खुश नसीब है, हम या वो, हम है ना। तो हम ये देखें कि भगवान से हम और मांगे भी क्यों, कितना मनुष्य को पेट के लिए चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पेट नहीं होता ना तो पाप नहीं होता, हम कहते हैं बेचारे पेट को क्यों दोष दे रहे हो, पेट को ज्यादा थोड़ी चाहिए, दो पेट भी नहीं है, जो एक पेट भर जाए तो दूसरे में रख दो भाई, शाम के लिए दूसरे पेट में भर के रखो। तो पेट के लिए कमाना बड़ी बात नहीं है, पर हाँ पेटियां तो जितनी भर के रखो, पेटियों की तो कमी नहीं, वो तो 100 भर के रखो मिलती जाएगी आपको, पहनेंगे तो 2 ही कपड़े, जूता भी 2 ही जो पहनेंगे, कोई 8-10 एक साथ पहनेंगे क्या। तो सामान तो चाहिए थोड़े समय का, जीवन का कल तक का भी भरोसा नहीं है, पर सामान जो बटोर रहे हैं जैसे कि 100 साल जीना है ऐसे लग रहा है। तो इसीलिए ये मनुष्य का कितना बड़ा अज्ञान है, जिसके वशीभूत होकर अगर भगवान को याद भी करता है तो उसमें केवल एक ही बात उसको पता है कि मांगना है भगवान से। परंतु राजयोग हमें क्या सिखाता है कि भिखारी मत बनो, वास्तव में परमात्मा तो इतना बड़ा दाता है जो हमें स्वर्ग का भी अधिकार दे सकता है, विश्व का महाराजा महारानी, सत्युग का स्वराज्य का अधिकारी बना सकता है, वह आपको कल बताया जाएगा। इतना ऊंचा अधिकार हमें दे रहा है, उसकी भेंट में ये कलयुग की छोटी छोटी चीजें जो आज है कल नहीं रहेगी, उसके पीछे हम अपना सारा श्वास संकल्प शक्ति को गंवा रहे हैं, और ये हीरे तुल्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। परमात्मा तो इतना बड़ा दाता है जो हमें ऐसा ऊंच मानव से देव बना रहा है जहां पर कोई कमी नहीं होगी, हमें प्रकृति का चरम सुख होगा, परंतु उसके लिए कुछ त्याग आवश्यक है, क्योंकि त्याग में भाग्य है, ये हम भूले नहीं। तो मांगे नहीं, उसकी बजाय जो है वो दिल से परमात्मा का शुक्रिया करें कि हमें इतना योग्य समझा, ये हमें जो दिया उसका सुख हम ले सके। तो धन्यवाद करना आता है या केवल मांगना ही आता है? क्या कहेंगे? धन्यवाद भी करना आता है ना। दुनिया में इतने स्वार्थी लोग होते हैं, मान लो हम किसी को बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, तो 10 बार तो उसको मदद की, लेकिन 11वीं बार वो जब मेरे से मदद मांगने आया और मैंने कहा भाई माफ कीजिए इस बार मैं नहीं कर सकता, तो जो 10 बार मदद किया वो तो भूल गया, पर वो 1 बार जो नहीं किया वो ही बोलता रह गया, इसने मुझे मदद नहीं की, इसने मुझे मदद नहीं की, इसने मुझे मदद दिया, 10 बार जो किया वो तो भूल ही गया। तो एहसान तो इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है, और जो नहीं मदद की वो ही उसको याद रहेगा। जैसे किसी के गुण 100 होंगे वो कभी नहीं दिखाई देंगे, पर 1 अवगुण होगा ना वही दिखाई देगा, इसके अंदर ये अवगुण है, इसके अंदर ये अवगुण है। ये मनुष्य की आज मनोवृत्ति हो गई है, जो स्वार्थी मनोवृत्ति हो गई है। हम भी तो यही कहते ना, हमने किसको मदद 10 बार की और 11वीं बार नहीं की, तो और उसने मेरी वही बात कह दी कि इसने तो मदद नहीं की, तो मैं कह सकती हूँ भाई 10 बार जो की वो तो भूल गए क्या आप, या अभी नहीं की तो कोई भी कारण होगा ना, पूछो तो सही कारण आप। तो मनुष्य ये सब अपने स्वार्थवश ईश्वर के साथ भी ऐसा ही संबंध रखता है, और परिणाम स्वरूप जो है उसका भी सुख नहीं ले पाता है, यही विडंबना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि और क्यों मांग रहे हो, जिसका है उसका सदुपयोग भी कितना किया है, जो और मांग रहे हो भगवान से तो उसकी बजाय क्या करो, बस जो है शिव बाबा का शुक्रिया दिल से करो, और फिर ये समझो बाबा ये आपके हैं, ये बच्चे भी आपके हैं, ये धन भी आपका है, ये तन भी आपका है, अंदर ही अंदर भगवान से बातें करो, तो क्या होगा आप हल्के हो जाएंगे। जिस जैसे अपना बोझ शिव बाबा को दे दिया, शिव बाबा को दे दिया बोझ, तो कितने हल्के हो जाते हैं, और अपने सिर पर पापों का बोझ तो है ही है, फिर व्यर्थ विचारों का भी बोझ है, तो जिम्मेदारियों का भी बोझ है, तो चिंताओं का भी बोझ है, तो बोझ ही बोझ लेकर के घूमेंगे, शांति कहाँ से मिलेगी, फिर कहेंगे भगवान शांति नहीं है, शांति नहीं है, कहाँ से आएगी शांति, शांति के विचार तो करो मन में। इसीलिए वस्तु मत मांगो भगवान से, और अच्छा कई कहते वस्तु न मांगे तो शांति तो मांगे ना, हम कहते ये भी कोई मांगने की चीज थोड़ी है, ये तो आपका अपना ही स्वभाव है, जल का स्वभाव ही शीतलता है, जल को शीतलता बाहर से नहीं लेनी है, गर्मी बाहर से उसको मिलेगी जो पानी गर्म हो जाएगा, पर शीतलता उसको बाहर से नहीं लेनी है, वो उसका ही स्वभाव है। तो जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव तक आना ये मुश्किल क्यों होना चाहिए, वो तो आपका अधिकार है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगी कि शिव बाबा मुझे शांति दो, नहीं, अंदर ही अंदर शिव बाबा से बातें करूंगी, क्या कहूंगी, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, ये अपने आप को ज्ञान दिया। शिव बाबा के सानिध्य में उनके शांति की किरणों को अनुभव करो, जैसे सूरज की किरण को अपने अंदर अनुभव करते हैं, तो शिव बाबा को सामने मन की आंख से देख करके उनकी शांति प्रेम आनंद शक्ति वो किरण में आत्मा अपने अंदर भर रही हूं, सराबोर हो रही हूं, ये अनुभव करो। तो शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। शिव बाबा आप हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु हो, आपके सानिध्य में मैं आत्मा बच्चा बन करके आपका आपका प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। और जो मन में है भले भगवान को कहो, परंतु ये नहीं है कि कुछ मांगो, दिल की बातें उनको कहो, साथी बनकर बनाओ उनको, बच्चा भी उनको बना सकते हैं। कई एक माता का मिसाल मैं आपको सुनाऊं। एक बार मेरी एक सहेली थी बचपन की, उसकी माँ बहुत कृष्ण की भक्ति करती थी, बहुत। तो मैं उसके घर में अक्सर जाती थी, कृष्ण का बड़ा सुंदर मंदिर था उसके घर में, रोज भक्ति करती थी, घंटों घंटों बैठी रहती थी, श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। तो कई सालों के बाद फिर मेरा जाना हुआ अपनी सहेली से मिलने के लिए। तो जब मैं उसके घर में गई तो देखा वो कृष्ण का मंदिर ही गुम, गायब हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, वो मंदिर कहाँ चला गया? कहते मैंने सब छोड़ दिया, सब दे दिया। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि हमने भगवान से बेटा मांगा तो 5 बेटियां हो गई, बेटा हुआ ही नहीं। तो भगवान ने हमको बेटा ही नहीं दिया तो मैं क्यों पूजा करूं भगवान की? हमने कहा माता जी अगर कृष्ण कोई बेटा बना देती होती तो झंझट ही नहीं, क्यों आप बेटे के पीछे आप गई? और अपना जो इष्ट है, चलो उनका भी थोड़ा बहुत सहारा तो था ना, उसको ही आपने अपने हाथ से गंवा दिया। बेटे के बेटे बेटा बेटा चाहिए, आजकल तो बेटियां ही बेटों से ज्यादा है, आजकल तो बेटियां बेटों से भी ज्यादा माँ बाप की मददगार बनती है। बेटे तो चले जाएंगे पत्नी को लेकर के, बेटी माँ की मददगार बनती है, माता पिता की। मानो क्या हमें भगवान से चाहिए ये हमें पता नहीं है, परमात्मा को भी नहीं जानते, उनकी शक्ति को भी नहीं पहचानते, उनसे लेना क्या है ये भी नहीं जानते। तो परिणाम स्वरूप हम भटक ही रहे हैं इस भूल भुलैया के संसार में, खेल में। अगर हम शिव बाबा को ही अपना बच्चा बना दें तो बस हमें और कुछ चाहिए नहीं। पति भी उनको बना देते, कई हम लोगों से पूछते हैं कि आपने शादी की? हमने कहा हाँ की, शिव परमात्मा से कर ली, और क्या चाहिए? चाहिए क्या कुछ? पार्वती ने क्या की? इतनी तपस्या किस लिए की? शिव को पाने के लिए। तो हम आत्मा भी तो पार्वती है ना, हम आत्मा ही सीता है, उस राम की सीता। मानो कि वास्तव में जो कुछ भी इन शास्त्रों में है ये सब आत्मा और परमात्मा के मिलन की ही तो यादगार है सारी, उसकी फिर कहानियां बना दी है सब कुछ, जो रूपक बना दिए हैं कई प्रकार के पुराण और शास्त्र कई जो बनाए हैं, है सारी आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात। तो जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं तो परमात्मा से कुछ भी मांगते नहीं है, मिलन में मांगना थोड़ी होता है, प्राप्ति प्राप्ति है और त्याग है। शिव बाबा इस देह अभिमान का मैं त्याग कर रही हूँ, यज्ञ में स्वाहा करना होता है। ये तन भी शिव बाबा का, मन भी शिव बाबा का, धन भी शिव बाबा का। फिर शिव बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे रखो अपने पास, परमात्मा हमारा क्या लेकर करेगा, उसको तो चाहिए नहीं, परम धाम में उसको महल नहीं बनाने हैं जो हमारा धन लेगा। वो कहेगा रखो अपने पास, लेकिन ट्रस्टी होकर के चलो, न्यासी ट्रस्टी होते ना, ट्रस्ट का पैसा होता है, समाज का पैसा होता है, वो अपने खाने पीने मौज के लिए नहीं यूज करते, सेवा में यूज करते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा से क्या बातें करो, अंदर ही अंदर शिव बाबा से गुणों की अनुभूति करो, शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ो, तो अनुभव होगा कि शांति सुख ये तो मेरे गले का हार है, मैं मांगने कहाँ जाती हूँ किसी से या ईश्वर से, भिखारी बन के क्यों मांग रही हूँ, ये तो मेरा मेरी ही चीज है। तो इसी प्रकार हम महसूस करते कि योग करना कोई मुश्किल नहीं है, अंदर ही अंदर भगवान से बातें करते रहो, जैसे कोई हम अकेले है ही नहीं। कई लोग अकेले होने से डिप्रेशन आ जाता है, अकेले है क्या बातें करे, किससे बातें करे, कोई साथी चाहिए, तो इतना डिप्रेशन आ जाता है जो पागल भी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। ये क्यों डिप्रेशन आता है, क्योंकि क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, जैसे एक ही जगह पर कोई हथौड़े से मारता रहे मारता है तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, तो दिमाग ही खाली हो जाता है और आत्मा की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए क्यों, क्या, क्या होता है, जो होता है, एक संसार है, ड्रामा है, देखते चलो। अपना साथी एक ईश्वर को बनाओ, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये सारे जब मन में हम दृढ़ता के संकल्प करते हैं तो कोई भी विघ्न हमें सताता नहीं, कोई कमी महसूस नहीं होती, कोई अंदर में कमजोरी नहीं आती और मांगने की तो बात ही दूर हो जाती है। इसीलिए गुण भी मांगने की चीज नहीं है। कई लोग फिर चलो गुण भी नहीं मांगते, कोई वस्तु भी नहीं मांगते, लेकिन जब देखो ना उनसे मिलते हैं तो यही कहेंगे, बस भगवान को मैं सदा माफी मांगता रहता हूँ, माफी मांगता रहता हूँ, ये भगवान माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। हम कहते हैं ये भी क्या माफ करो, माफ करो, कितनी कमजोर हो क्या। तो कहते हैं अगर हमने कोई भूल की है तो माफी नहीं मांगे भगवान से। हम कहते फिर भूल करते ही क्यों, एक तरफ भूल करो फिर दूसरी तरफ माफी मांगो, भूल करते ही क्यों। तो कहते भूले तो होती रहती है ना, हम मनुष्य तो भूलों के सागर है। एक भाई था, रोज प्रार्थना में कहे भगवान मैं तो भूलों का सागर हूँ और तुम क्षमा के सागर हो। तो इसका मतलब मैं भूले करता रहूं और तुम क्षमा करते रहो। तुम तो दयालु हो, कृपालु हो, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो भूलों का सागर हूं, फिर दया करो मुझ पर, दया करो। इतनी दीनता, हीनता अपनी दिखाते हैं। तो कहां गई वो आत्मा की शक्ति। तो कई कहते फिर भगवान से माफी नहीं मांगे। हम कहते माफी मांगना एक चीज है और उसके साथ साथ भूल दोबारा नहीं करना ये भी तो हो ना। एक बच्चे को माँ हाँ कहेगी अच्छा बेटा मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ पर दोबारा नहीं करना। बेटा कहेगा सॉरी मम्मी, सॉरी सॉरी, हाँ माफ करो सॉरी। तो माँ कहेगी अच्छा ठीक है पर दोबारा नहीं करोगे, प्रॉमिस। तो बेटा कहेगा हाँ मम्मी अभी नहीं करूंगा। फिर दोबारा भूल करे तो कितनी बार मम्मी उसको माफ करेगी। हाँ भाई कितनी बार माफ करेगी, थोड़ी तो सजा देगी ना, नहीं तो बच्चा सुधरेगा कैसे। तो भगवान भी कहता है कि ऐसे माफी मांग करके ये मत समझो कि भगवान ने क्षमा कर दिया। कर्म की गति बड़ी न्यारी है, आपको बताया जाएगा। हर कर्म का फल जरूर मिलता है। तो कई कहते फिर माफी न मांगे। हम कहते जरूर मांगो परंतु उसके साथ साथ प्रतिज्ञा भी करो कि दोबारा नहीं करेंगे, वो आपके हाथ में है। एक बार भूल हुई उससे सबक सीख लिया तो दोबारा तो मत करो। ये नहीं कि बार बार करते रहो और बार बार माफी मांगते रहो तो ईश्वर का तो परम सुख तो कभी नहीं ले सकेंगे। भले आप माफी मांगते रहो सारा जीवन, वो सुख कब अनुभव करोगे, शांति कब अनुभव करोगे, वो शक्ति भीतर की कब अनुभव करोगे। वो तो तब अनुभव हो सकेगी जब उनको साथी बनाओ और अंदर में ये प्रतिज्ञा करो कि मेरे से फिर मैं ऐसी भूल दोबारा नहीं करूंगा। तो हिम्मत रखी तो परमात्मा की मदद भी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, परमात्मा की मदद हमारा अधिकार है लेकिन शर्त भी साथ साथ है। तुम हिम्मत रखो तो मैं मदद करूं। भगवान मदद क्यों नहीं करता, पर अगर हम हिम्मत रखे ही नहीं तो मदद कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। एक छोटा बच्चा भी हिम्मत रख करके पैर आगे रखता है चलना सीखने के लिए, हिम्मत ही नहीं रखेगा तो माँ उसको चलना कैसे सिखाएगी। बच्चे को अगर चलना सिखाती है माँ तो क्या कहेगी, बेटा पाँव ऊपर करो, पाँव ऊपर करो, पाँव रखो। अब बच्चा डरता गिर जाऊंगा, मान लो गिर जाऊंगा तो कभी सीखेगा चलना। खुद हिम्मत रखता है और जैसे पांव आगे रखता है अगर गिरता है तो माँ पकड़ लेती है ना, माँ तो खड़ी है वहां। और जैसे हिम्मत आती है, मदद मिलती है और चलना शुरू करता है, कितनी खुशी होती है, अरे मैं चल सकता हूँ। फिर तो दौड़ता है माँ पीछे बच्चा आगे है? पर पहला हिम्मत का कदम तो बच्चे का होगा ना, तभी तो माँ उसको चलना भी सिखाएगी। फिर तो बच्चा माँ से भी आगे चला जाता है। माँ पीछे पीछे, तो भगवान भी हमें आगे रखते हैं कि बच्चे तुम तो कितने महान हो, पहचानो अपने असली स्वरूप को। तो ये जब अपने अंतर में हम चिंतन करते हैं, ये राजयोग से हम शक्ति प्राप्त करते हैं। इसको हम कहते हैं ईश्वर से रूह रिहान करना, जिसमें परमात्मा को सर्व संबंधों से हम याद करते हैं। इसका और विस्तार आप सेवा केंद्रों पर जाकर के सुनना। और तीसरे, जैसे इस कदम से हम आगे बढ़ते हैं, उनका चरम परम सुख हम सर्व संबंधों का अनुभव करने लगते हैं, फिर तीसरी अवस्था आती है जिसमें सोच बंद पर अनुभूति आरंभ, अनुभूति शुरू होती है। जैसे आप भोजन करते हैं ना, भूख लगी है बहुत जबरदस्त, सारा दिन आपने खाया नहीं और मान लो बहुत भूख लगी और भोजन आपके सामने आता है तो कितनी भूख लगती है। पर जैसे आप खाने लगते हैं, आधा खा लेते हैं, थोड़ी तृप्ति होती है, फिर वो संकल्प की भूख लगी है वो तो बंद हो जाती है ना, फिर भी आती है क्या? नहीं, वो संकल्प बंद, भूख लगी पूरी हुई, बस अभी तृप्ति की निशानी है, तृप्ति के नजदीक आते जाते हैं। तो पहली दो अवस्था में हम अंदर ही अंदर मनन चिंतन करते हैं, पहले अपने से बातें करते, खुद को ज्ञान देते हैं, फिर शिव बाबा से बातें करके उनसे सर्व संबंध जोड़ते हैं, वो माता पिता बंधु सखा कैसे हैं, उनसे मांगते नहीं है पर अनुभूति करते, उनके साथ की अनुभूति, जिससे शक्ति आती है, शांति मिलती है, खुशी बढ़ती है, हिम्मत आती है, मदद मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है कि मेरा साथी देखो कौन है। और फिर तीसरी अवस्था में चिंतन समाप्त, अनुभूति आरंभ, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त के सारे भाव खत्म हो जाते हैं, कुछ भी संसार की बातें याद ही नहीं रहती, बस ऐसे लगता है जैसे मैं आत्मा शिव बाबा में खो गई, उस परम सुख का अनुभव कर रही हूं। जैसे किसी के प्यार में हम खो गए तो परमात्मा से प्यार, इनसे ऊंचा और कोई प्यार नहीं। कोई सुंदर चीज से प्यार होता है, सुंदर व्यक्ति से प्यार होता है, पर सबसे सुंदर तो ईश्वर है। मनुष्य की सुंदरता तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, पर ईश्वर की सुंदरता तो गुणों की सुंदरता है। सत्य चीज से प्यार होता है, झूठ से प्यार नहीं है। तो सबसे सत्य तो ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सत्य माना अविनाशी, स्थिर, एक रस। तो उस अविनाशी सत्य से अगर प्रीत है तो उसकी भेंट में तो बाकी सब असत्य है, सब परिवर्तनशील है संसार में। शिवम माना कल्याणकारी, परमात्मा कल्याणकारी है, उनसे और आगे कौन कल्याणकारी हो सकता है, इसलिए प्रीत उनसे ही करो जो कल्याणकारी हो। जिसका प्यार केवल स्वार्थ का प्यार है उससे क्या प्रीत रखो। तो भगवान का प्यार तो कल्याणकारी प्यार है, क्योंकि परमात्मा सदा ही हमारा हित सोचता है, कभी भी अकल्याण हमारे लिए नहीं सोचेगा, तो प्रीत तो उनसे करो। इसीलिए जब वो सत्यम शिवम सुंदरम से प्रीत हो जाती है, अब इसके उससे ऊंची और किससे प्रीत हो सकती है। और जैसे वो प्रीत का अनुभव करते, शिव बाबा के गुणों का रसा स्वादन करते जाते, महसूस होता जैसे एक एक गुण में समा गए, शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में खो गई, प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में खो गई, आनंद स्वरूप आत्मा आनंद के सागर में खो गई। इसको कहते अव्यक्त अवस्था। इस अव्यक्त अवस्था में आत्मा इतना अपने आप को हल्का महसूस करती है, जैसे सारे बोझ खत्म हो गए, हल्की हो गई, किचरा साफ होने लगता है। और इसी अवस्था से गुजरते गुजरते चौथी अवस्था आती है, जो चरम अवस्था है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था, इसको हम कहते हैं कर्मातीत अवस्था, या बिंदु स्वरूप की अवस्था, या बीज रूप की अवस्था, जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार होता है, एक बिंदु में सिंधु की शक्ति है परमात्मा में, बिंदु में सिंधु की शक्ति है, वो आत्मा भी स्वयं को उस बिंदु रूप में अनुभव करती है। जैसे परमात्मा की सारी शक्ति उसने अपने अंदर में भर दी, जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस से फोकल पॉइंट पर कागज रखते हैं, तो क्या होता है, इतना बड़ा सूर्य पर उसका प्रतिबिंब एक छोटा सा बिंदु बन जाता है। उस बिंदु में पूरे सूरज की शक्ति होती है और एक सेकंड में कागज जलने लगता है, क्योंकि वो केंद्र पर हमने कागज रखा है, तो सूरज की किरणें केंद्रित होकर के उस कागज पर पड़ती है और वो बिंदु जो प्रतिबिंब बनता है वो कागज को वहीं से जलाना चालू कर देता है। तो क्या किया हमने, सूरज का प्रतिबिंब बनाया एक बिंदु के रूप में, उस सिंधु को बिंदु में समाहित किया, शक्ति उतनी उस सिंधु की पर एक बिंदु में। तो परमात्मा की अनंत शक्ति हम आत्मा अपने अंदर अनुभव करने लगेंगे। इसी को कई संतों ने कह दिया आत्मा परमात्मा बन जाती है, या परमात्मा के गुणों में हम अपने आप को खो देते हैं, डाल देते हैं, समा डालते हैं, इसको कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। वास्तव में ये विलीनता की अवस्था कोई स्थूल नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन जाती है, लेकिन परमात्मा के सारे गुण आत्मा के अंदर समाहित हो जाते हैं, और वो स्वरूप अगर एक सेकंड के लिए भी अनुभव किया ना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये टॉप गियर है। इतना आनंद आएगा, इतनी शक्ति की अनुभूति होगी, कोई विघ्न नहीं, कोई रुकावट नहीं, और उसी स्थिति में आत्मा अनुभव करेगी कि जैसे अनेक जन्मों के पाप भस्म हो गए, जैसे किचरा अग्नि में डाला भस्म हो गया, सोना अग्नि में डाला शुद्ध हो गया, कोई कठोर चीज अग्नि में डाली वो नरम हो गई, कोई नरम चीज डाली वो मजबूत हो गई, तो आत्मा इस योग की अग्नि में अपने आप को तपाती है और एक परिवर्तन जीवन में अनुभव करती है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति, कृति, ये सब बदल जाता है, एक जीवन का परिवर्तन महसूस करती है, और इतना हल्कापन लगता है जैसे सचमुच एक नया जीवन मिला, जैसे बच्चे का जीवन नया जीवन है, पूर्व जन्म में पता नहीं क्या क्या किया होगा, पर बच्चे का जीवन तो कितना प्यारा जीवन है। तो हम आत्माओं का भी एक नया जीवन हो जाता है, और उस नए जीवन में हम महसूस करते हैं कि हम तो कितने हल्के हैं, हम कोई अशुद्ध नहीं, पतित नहीं, विकारी नहीं, दुखी नहीं, अशांत नहीं, मैं तो शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिवान पिता की संतान, शक्ति स्वरूप अनुभव करते हैं। इसी को ही विवेकानंद ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन, या एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन, आपके अंदर जो संपूर्ण स्थिति है उसको प्रकट करना, अनुभव करना, उजागर करना भीतर से, यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा योग है। और जब प्रकट किया, कर्मों में लाया, वही कर्म की कुशलता है, योग कर्मेषु कौशलम, कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है। लेकिन कर्मों में कुशलता कैसे आएगी, उस परमात्मा से योग लगाने से, जो सर्व गुणों का स्रोत है। ठीक है, तभी हम बैठेंगे फिर से उसी स्थिति में और देखेंगे कि कहां तक पहुंचते हैं हम, क्या पहली अवस्था तक ही रहते हैं, केवल मनन चिंतन ही कर रहे हैं, या परमात्मा से रूहानी तक ही पहुंचते हैं या इनसे और आगे बढ़ करके उस अव्यक्त अवस्था का अनुभव करते हैं जिसमें परमात्मा के गुणों में खो जाते हैं, या और भी इनसे आगे जाकर उस संपूर्ण स्थिति का अनुभव करते जिसमें परमात्मा के सारे गुण चरम स्वरूप में आत्मा बिंदु के अंदर सिंधु समाया हुआ है, ये हम अनुभव करते हैं तो हम अपने अंदर देखेंगे कि कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो अभी बैठिए सब बिल्कुल सीधा होकर। और जैसे बताया अपने अंदर खुशी और नशा प्रकट करें, मैं आत्मा क्या हूं, किसकी हूं, किस लिए हूं, क्या चाहती हूं और वह मुझे कैसे प्राप्त करना है। तो सीधा बैठे, आंखें भले खुली रखें, अगर बंद हो जाती है कोई बात नहीं, पर जानबूझ करके बंद रखे नहीं तो निद्रा की स्थिति आ सकती है, इसलिए जागृत अवस्था रहे और सामने देखें, चाहे इस बिंदु को देखें, चाहे आपके सामने योगी उपस्थित है उन्हें देखें, उनसे प्रेरणा लें, लेकिन मन की आंख परमात्मा को देखें जो बिंदु में सिंधु है, सत्यम शिवम सुंदरम है, उनसे ही मेरे सर्व संबंध है, एक उनसे ही नाता जोड़ना है, उनमें ही मन एकाग्र करना है। इससे हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, मन स्थिर होगा और आत्मा सशक्त बनेगी। अगर मन कहीं बेलगाम होकर भटकना शुरू करे तो फिर से याद दिलाओ अपने आप को, उसे ब्रेक लगाने के लिए याद दिलाओ मैं कौन हूं, तो फिर अपने असली स्वरूप तक पहुंच जाएंगे और व्यर्थ और अशुद्ध को हम ब्रेक लगा सकेंगे। भीतर जाएं, स्वयं से बातें करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर शिव पिता की संतान हूं, शांति धाम का वासी हूं, मन और बुद्धि से अपने आप को देह से न्यारी शक्ति अनुभव करें, ये शरीर रूपी वस्त्र मुझसे अलग है, इस देह और देह की दुनिया में तो मैं मेहमान हूं, मेरा मूल वतन तो बहुत दूर पांच तत्वों से पार है, आवाज की दुनिया से बहुत दूर है, जहां मैं अपने आप को शुद्ध रूप में ही ले जा सकती हूं। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में तो अति शुद्ध हूं। पवित्र हूं। सभी सद्गुणों से भरपूर हूं। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैं आत्मा अपने मूल वतन में, अपने ही मूल स्वभाव में स्थित हूं। अति शांत, एक बेहद दुनिया में जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति ही शांति है। मैं आत्मा अपने धाम में अपने प्यारे शिव पिता के सम्मुख हूं। जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, उस बेहद शिव पिता की मैं संतान हूं, अधिकारी हूं, वारिस हूं। शिव पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आत्मा आपकी संतान शक्ति स्वरूप हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा प्रकृति जीत हूं। इंद्रिय जीत, माया जीत हूं। मैं विजयी आत्मा हूं। परमात्मा की छत्र छाया मुझ आत्मा को सुरक्षित रख रही है। प्यारे शिव पिता का सानिध्य पाकर मैं धन्य हो गई आत्मा। कितना आनंद है, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। चले जाइए सागर की गहराई में, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। सर्व आकर्षणों से पार एक परमात्म आकर्षण जो सर्व गुणों में बेअंत है, सर्व गुणों का दाता है, परम स्रोत है। मैं आत्मा, सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, स्वतंत्र, शिव पिता के गुणों का संपूर्ण अनुभव कर रही हूँ। ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आपका कितना शुक्रिया करें, आपसे प्राप्त ये ईश्वरीय सुख मुझे भरपूर कर रहा है। जो पाना था वह मैंने सब कुछ पा लिया बाबा, मन को वापस साकारी लोक में कर्म क्षेत्र पर अपने साकारी शरीर में पहुंचाए। याद करें मैं कौन हूं, आत्मा जो भ्रकुटी के मध्य विराजमान अपने इंद्रियों का राजा हो, इस संसार में रहते हुए भी स्वराज्य का अधिकारी हो, अपने गुणों का अधिकारी हो, परम पिता परमात्मा के प्यार का भी अधिकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है मुझ आत्मा का। ओम शांति।